તારીખ 29/12/1992, શ્રી દ્રવદ્રષ્ટિ પ્રકાશ, પત્રાંક 49 અને 50 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 243.
દ્રષ્ટિ પ્રકાશ, પત્રાંક 49, પૃષ્ઠ સંખ્યા 75. પુરુષાર્થ કા વિષય મેં સ્પષ્ટીકરણ દેતે હૈ. કલ વહાં તક આ ગયા, શ્રદ્ધા જ્ઞાન કા વિષય પૂરા હુઆ હૈ. સ્વરૂપની પ્યાસ, પ્યાસ સ્વયં પર્યાય સ્વભાવ હૈ. હમ તો હિન્દી મેં સ્વરૂપ કી પ્યાસ હોતી હૈ, લેકિન પ્રશ્ન કરતા ગુજરાતી હૈ, ઇસલિયે દોહરાયા હૈ. સ્વરૂપની પ્યાસ તો ઓ શબ્દ, ઉતના શબ્દ હૈ વો જિસને ચિઠ્ઠી લિખા હૈ, પત્ર લિખા હૈ, ઉસકા હૈ સ્વરૂપની પ્યાસ. ઉસ પર કહેતે હૈ કે પ્યાસ સ્વયં પર્યાય સ્વભાવ હૈ. પરિણામ મેં જ્ઞાન કી તૃષા લગના, ક્યા જિજ્ઞાસા, જરૂરત, એસા પરિણામ હોના વો પર્યાય કા સ્વભાવ હૈ. વો પર્યાય કા કાર્ય હૈ, પર્યાય કા સ્વભાવ હૈ. વીર્ય ગુણ કે પર્યાય મેં સદૈવ પુરુષાર્થ હોતા રહેતા હૈ, ઓર આત્મા મેં જો વીર્ય ગુણ હૈ ઉસકા પરિણમન સદૈવ ચલતા હૈ, ક્યોંકિ ગુણ પરિણમન બિના રહેતા નહીં. હંમેશા ગુણ કા પરિણમન, સભી ગુણ કા ચાલુ રહેતા હૈ. જબ સભી ગુણ કા ચાલુ રહેતા હૈ તો વીર્ય ગુણ કા ભી સદૈવ રહેતા હૈ, ઉસકો પુરુષાર્થ કહેતે હૈ. વીર્ય ગુણ કી પુરુષાર્થ પર્યાય કો પુરુષાર્થ કહેતે હૈ. નિત્ય સહજ નિષ્ક્રિય ત્રિકાલી દ્રવ્ય મેં દ્રષ્ટિ અભેદ હોને પર જો પુરુષાર્થ હોતા રહેતા હૈ વો સ્વાશ્રિત સહજ જ્ઞાનાનંદી પુરુષાર્થ રૂપ પર્યાય સ્વભાવ હૈ. સમ્યક પુરુષાર્થ જિસકો કહેતે હૈ વો એસા હૈ કે દ્રષ્ટિ સમ્યક હોતી હૈ, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ હોતી હૈ. કૈસા હૈ દ્રવ્ય કે નિત્ય સહજ નિષ્ક્રિય ત્રિકાલી હૈ. દ્રવ્ય નિત્ય હૈ, સહજ સ્વાભાવિક હૈ, કિસી ને બનાયા નહીં. નિષ્ક્રિય હૈ, ઉસમેં કોઈ ક્રિયા નહીં. સામર્થ રૂપ હૈ ત્રિકાલી દ્રવ્ય, ઓર ત્રિકાલી હૈ. એસે દ્રવ્ય મેં દ્રષ્ટિ અભેદ હોને પર મેને શ્રદ્ધા અહં અભેદ ભાવ સે કરતી હૈ, તબ જો પુરુષાર્થ હોતા રહેતા હૈ, તબ વીર્ય ગુણ કા જો પરિણમન હોતા રહેતા હૈ વો સ્વાશ્રિત હોતા હૈ, સહેજ હોતા હૈ, ઓર ઉસ પુરુષાર્થ સે જ્ઞાન ઓર આનંદ આદિ પર્યાય ભી પ્રગટ હોતી હૈ. इसलिए उसको ज्ञानानंदी पुरुषार्थ कहने में आता है, क्योंकि वीर्य का स्वभाव स्वरूप रचना का है. स्वरूप की रचना करना वो वीर्य गुण का कार्य है, तो उसमें मुख्य ज्ञानानंद है, वो मुख्य स्वरूप रचना है. वो भी पर्याय स्वभाव है, परिणमन में जो होता है वो पर्याय स्वभाव है. વિકલ્પાત્મક પુરુષાર્થ એ સહજ કૃત્રિમ પુરુષાર્થ હૈ, ઓર વિકલ્પ મેં જો જોર આતા હૈ, મેં એસા કરું એસા કરું, એસા જો હોતા હૈ વો પુરુષાર્થ અસહજ હૈ, ઓર યે કૃત્રિમ હૈ, ક્યોંકિ ઉસમેં કુછ કરને કા વિકલ્પ રહેતા હૈ, યે કૃત્રિમ પુરુષાર્થ હૈ, સહેજ નહીં હૈ. ફિર વો વિકલ્પ સ્વરૂપ મેં લીનતા કરને કા હોવે, પુરુષાર્થ બઢાને કા વિકલ્પ હોવે તો ભી વો કૃત્રિમ પુરુષાર્થ હૈ. એસા હૈ કે કરના નહીં હૈ, હોના ચાહીએ. નહીં, વો તો આપકી એક ધારણા હૈ કે વિકલ્પ કે બિના કાર્ય નહીં હોતા, ઇસલિયે આપકો એસા પ્રશ્ન રહેતા હૈ. लेकिन लक्ष्य में जब स्वरूप आता है तो सहज पुरुषार्थ, स्वरूप के प्रति का पुरुषार्थ चालू हो जाता है। ऐसी बात है क्या? स्वरूप के लक्ष्य से सहज पुरुषार्थ चालू रहता है। देखिए संसार में क्या होता है कि जहां लाभ दिखता है, जहां सुख की प्राप्ति दिखती है, उस दिशा में, उस विषय में सहज पुरुषार्थ होता है कि नहीं होता है? आई समझ में? ऐसे ही नुकसान में है। लाभ को प्राप्त करना, नुकसान से बचना, वो सहज होता है। या नुकसान लाभ में हर्षान्वित होना, नुकसान में खेद खिन्न होना, ये सहज होता है। उसमें विकल्प नहीं करना पड़ता है। जैसे किसी को रोने का आता है वियोग में, तो क्या विकल्प करना पड़ता है कि भाई रहा नहीं जाता, क्या करे, हमारे से रहा नहीं जाता? तो सहज संसार में भी सहज परिस्थिति होती है कि नहीं होती है? तो ऐसे आत्मा स्वयं अनंत लाभ स्वरूप है। क्या? द्रव्य आत्म लाभ पारिणामिक, पारिणामिक भाव की व्याख्या ही ऐसी बनाई है। क्या? द्रव्य आत्म लाभ पारिणामिक, तो स्वयं अनंत लाभ स्वरूप है, अनंत सुख है इसमें। तो जब अनंत सुख स्वरूप में मालूम पड़ता है तो स्वरूप के प्रति परिणाम का पुरुषार्थ होना रोका नहीं जा सकता, विकल्प नहीं करना पड़ता, बिना विकल्प हो जाता है। ऐसी स्थिति भी होती है। तो ऐसी स्थिति है वो सही स्थिति है, और विकल्प करना पड़े वो असहज और कृत्रिम है। जैसे अपना काम है तो कोई किसी के कहने से अपन करते हैं क्या? नौकर को बोलना पड़ता है कि तुमको ये काम करना है, धनी को थोड़ा बोलना पड़ता है, क्योंकि अपना काम है। ऐसे करना पड़े ये सब विकल्प, कार्य करने का जो विकल्प है वो सही परिस्थिति नहीं है, ऐसा उसमें प्रसिद्ध होता है, प्रदर्शित होता है कि वो सही परिस्थिति नहीं है। मैं मेरे स्वरूप की महिमा करूं, ऐसा विकल्प आवे तो उसमें सच्ची महिमा नहीं है। क्या? मुझे मेरे स्वरूप की महिमा करनी चाहिए। ऐसे परिणाम में सच्ची महिमा आई नहीं, आए समझे? कृत्रिम झूठी, मैंने कृत्रिम है, असहज है, क्योंकि स्वरूप महिमावंत है। जब स्वरूप स्वयं महिमावंत है तो उसकी महिमा करना ऐसा विकल्प क्यों? उसकी महिमावंत स्वरूप की महिमा तो छोड़ी नहीं जाती, हो जाती है, उसको करना करना ऐसा विकल्प क्यों? हाँ, आपको कोई ऐसा समझाते हैं कभी कि अपने बच्चों से प्रेम करना, हाँ, इसके लिए कोई ट्यूशन लेना पड़ता है, कोई स्कूल में जाना पड़ता है क्या, सीखना पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि ये सहज है। अब जो नहीं करता है उसको बोलना पड़ता है कि आपको अपने परिवार के प्रति प्रेम रखना चाहिए, अपने बच्चों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। फिर वो करेगा तो क्या कृत्रिम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सहज तो आता नहीं उसको। जब कोई उसको फिर दबाव डालता है या कोई सिखाता है, समझाता है, तब करता है, तो वो असहज हो गया, कृत्रिम हो गया। इसलिए इसलिए विकल्पात्मक पुरुषार्थ है वो असहज है, कृत्रिम पुरुषार्थ है। सच्चा पुरुषार्थ का स्वरूप ऐसा है ही नहीं, जिसको क्रमबद्ध नहीं बैठता है ना, वो वही प्रश्न करते हैं कि फिर पुरुषार्थ कैसे करेंगे। अगर पर्याय क्रमबद्ध होगी तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे, क्यों? कि उनकी धारणा में ऐसी बात है कि करू 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 ऐसा जोर का नाम पुरुषार्थ है, करू करू का विकल्प को ही पुरुषार्थ समझ कर बैठे हैं। तो जो क्रमबद्ध है उसमें तो करने की बात तो रही नहीं, सब पर्याय अपने क्रम में सहज होती है, तो उनको पुरुषार्थ नहीं दिखता है वहां। लेकिन पुरुषार्थ भी सहज है, सभी पर्याय सहज ही है, अपने काल में सभी पर्याय सहज होती है, उनको करने का कृत्रिम भाव करना वही अज्ञान और असहजता है। भोग भी करना नहीं पड़ता, सहज चलता है।
तो
ऐसा विकल्प आ जाए तो भी हमारे समझ में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि कार्य तो सहज होना चाहिए, कृत्रिमता कहाँ तक चलाएंगे। जैसे कि मोह भाव से चल रहे हैं, आपका इधर दृष्टांत ले वे बात का, तो उसमें दुख है कि नहीं है? दुख लगता नहीं है तो वहां से उठने का सवाल नहीं रहता। तो ज्ञानी ये कहेंगे कि आपको दुख लगना चाहिए, तो क्या कोई जबरन दुख लगना चाहिए क्या? हाँ, कोई जबरन दुख लगाया जाता है क्या? ऐसा होता नहीं। सहज जो दुख है वो दुख रूप महसूस होना चाहिए। जब दुख दुख रूप अनुभव में आता है तब जीव का ऐसा स्वभाव है, सहज स्वभाव है, कि वो दुख को कभी नहीं चाहता। वो दुख से हटने का पुरुषार्थ किए बिना रह सकता नहीं, वो सहज है, कृत्रिम नहीं है। विकल्प आ जाए तो भी ये लगता है कि कृत्रिम है, बाकी वस्तु व्यवस्था तो सहजी है वो। तो इसलिए जो जरूरत लगी सुख की, और सुख का सुख स्वरूप अनंत सुख स्वरूप सुखधाम अपना आत्मा ही है, ऐसा जब पता चलता है तो आत्मा के प्रति पुरुषार्थ का लगना जोर आ जाना वो सहज होता है। विकल्प आ जाए तो भी वो विकल्प का निषेध होता है। ये सहज है, सहज होना चाहिए, ये सहज स्थिति में ही बनना चाहिए, ये सब बात है, ऐसी बात है।
तो वो लगता नहीं, दुख लगता नहीं, तो इसका भी कोई मार्ग है कि दुख लगे? जब ज्ञानी कहते हैं दुख लगना चाहिए, दुख लगता नहीं, यहाँ एक मुझमन पैदा होती है कि फिर क्या करें।
उसमें वो बात है कि उनको ये विचार होना चाहिए कि ज्ञानी कहते हैं वो तो सही है, अब गलती तो मेरी रही, तो गलती मिटाना हो तो गलती का पता चले तब तो निकलेगी, तो उसकी खोज करनी चाहिए कि मुझे क्यों दुख मालूम नहीं हो रहा है। दुख है फिर भी दुख मुझे क्यों नहीं मालूम पड़ता, मैं इतना अंधा क्यों हो गया, क्या मैं इतना अंधा क्यों हो गया कि दुख होते हुए मुझे दुख मालूम नहीं पड़ता। हाँ, ऐसे तो वहां उनको खोज चलनी चाहिए, अपने जो परिणाम चल रहे हैं उसमें खोज चलनी चाहिए। हाँ, खोज चलनी चाहिए और उसका अवलोकन चलना चाहिए कि है, कहते हैं तो मुझे मालूम नहीं पड़ता है, तो मैं जरा ध्यान से देखूं, बारीकाई से देखूं, सूक्ष्मता से देखूं, मेरा उपयोग ज्यादा स्थूल हो गया है, इसका मतलब ये हो कि मेरा ज्ञान ज्यादा स्थूल हो गया है। तो ऐसे तलाश करने से पता चलेगा मालूम पड़ेगा, ऐसी बात है। विकल्पात्मक पुरुषार्थ असहज कृत्रिम पुरुषार्थ है, सहज द्रव्य स्वभाव की अरुचि होने से पर्याय में सहज पुरुषार्थ नहीं उघड़ता। क्या क्यों सहज पुरुषार्थ नहीं चलता? कि सहज द्रव्य स्वभाव की अरुचि होने से, अपने शांत स्वभाव की, अपने निराकुल स्वभाव की, सुख स्वभाव की रुचि नहीं है, यही कारण है। क्योंकि रुचि अनुयायी वीर सिद्धांत ऐसा है कि पुरुषार्थ तो रुचि को अनुसरण करता है। जो द्रव्य स्वभाव की रुचि होवे तो द्रव्य प्रति के पुरुषार्थ सहज चलेगा, और अरुचि होने से ये पुरुषार्थ नहीं चलता है। हम देखिए, हमारे वर्तमान मुमुक्षुओं की समस्या का समाधान यहाँ पर आता है। अपने जो अभ्यासी मुमुक्षु हैं, तत्वज्ञान के अभ्यास जो करते हैं, उनको ये बात तो लगी है कि बात तो सब समझ में आती है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता। क्या कहेंगे? कि बात तो समझ में आती है कि आत्मा है, वो परमात्म तत्व है, परम परिणामिक भाव, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, अनंत गुण धाम है, लेकिन हम वो बात समझ में आने पर स्वरूप तो समझ में आता है, फिर स्वरूप प्रति का पुरुषार्थ क्यों नहीं चलता है? क्योंकि स्वरूप की रुचि नहीं है। रुचि हुए तो पुरुषार्थ चले बिना रह नहीं। बहुत सहज है। सहज द्रव्य स्वभाव की अरुचि होने से पर्याय में सहज पुरुषार्थ नहीं उगड़ता। अतः मिथ्या दृष्टि नियतवादी एकांते कृत्रिम पुरुषार्थ करता रहता है। उसको विकल्पात्मक पुरुषार्थ करने का सिद्धांत उन्होंने बना रखा है। कैसा करूं करूं होना ही चाहिए, विकल्प आवे तो ही काम चलेगा, विकल्प होने से ही काम आगे बढ़ेगा, विकल्प नहीं होगा तो काम कैसे होगा? ये सही समझ नहीं है। और इसलिए वो ऐसा करूं करूं ऐसा परिणाम करते रहता है। नियतवादी मैंने क्या है कि जिस काल में जो होने वाला है वो होगा, वो नियतवादी है, लेकिन वो कृत्रिम पुरुषार्थ करता है, वो सही पुरुषार्थ नहीं करता, क्योंकि एकांत नियतवादी है। वो क्या है, वो जो जिसने पत्र लिखा है उसके उत्तर के संदर्भ में ये बात चल रही है। उसको पत्र में जो बात उसने लिखी है उसी अनुसार वो उत्तर दे रहे हैं, इसलिए अपनी समझ में कोई बात रेफरेंस नहीं मिले तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी नहीं मिलेगा। इसी कारण थवानु हसे तेम थसे, इस आशय को कहने का वह यथार्थ अधिकारी नहीं है। तो क्रमगत पर्याय का कहने का अधिकारी नहीं है, वो एकांत नियतवादी है। क्यों? कि करूं 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 ऐसा विकल्पात्मक पुरुषार्थ को स्वीकार करता है, इसलिए वो थवानु असेते थसे वाद उनकी तो सच्ची नहीं है। उसके अभिप्राय में फेरफार की बुद्धि तो पड़ी रहती है। उसके अभिप्राय में फेरफार करने की तो बात है ही, वो तो पर्याय को फेरबदल करना चाहता है, मानता है कि पर्याय को बदलनी चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे पुरुषार्थ को उपाड़ना चाहिए, ऐसे पर्याय को ऐसा करना चाहिए, ऐसा उनको अभिप्राय में बात पड़ी है। उसके अभिप्राय में फेरफार की बुद्धि तो पड़ी रहती है, उसकी स्वतंत्र योग्यता निरंतर परावलंबी वर्तती रहती है, वो भी स्वतंत्र है। कैसी भाषा आई है कि परालंबी पना तो है उसको, पर का अवलंबन तो लेता रहता है, वो स्वयं का तो अवलंबन नहीं ले रहा है, उसको पर का अवलंबन वर्तता है, और पर का अवलंबन वाली इसकी योग्यता भी स्वतंत्र है। वो भी स्वतंत्र है, वो उसे उसमें उत्साह बढ़ता रहता है, और उसको उसमें परावलंबन में भी उत्साह बढ़ता रहता है। यह बात स्वद्रव्य अवलंबन करने वाला ज्ञानी यथार्थ जानता है, उसको पता नहीं है। अज्ञानी को अपना परिणाम कैसे चल रहा है, कहाँ गड़बड़ी है, उसका उसको पता नहीं है। लेकिन स्वद्रव्य का अवलंबन करने वाला जो ज्ञानी है, वो यथार्थ जानता है कि अज्ञानी कैसे परिणमन करता है। तीन बात पूरी हुई, चौथा मुद्दा लिया है कि संसारी जीव स्वरुचि अनुसार अपनी रस पूर्ति के हेतु अमुक पर को इष्ट जानता है, अतः इष्ट प्राप्ति में बाधक कारणों से द्वेष करता है। इसका कारण मात्र परावलंबी रुचि ही है, अन्य नहीं। क्या कहा कि संसारी मिथ्या दृष्टि जीव को अपनी जैसी जैसी जिस विषय में रुचि होती है, उसी अनुसार अपने रस को पोषण करने के लिए वो अमुक अमुक पदार्थ को अच्छा जानता है, इष्ट जानता है, मैंने अच्छा जानता है, सुखदायक जानता है, अनुकूल जानता है, ऐसा जानता है। और इस प्रकार की उनका अभिप्राय होने से इसकी वो जो पदार्थ को ठीक जानता है उसकी प्राप्ति में कोई बाधा करता है तो उसके प्रति उसको द्वेष आए बिना नहीं रहेगा, उसको द्वेष आ जाएगा कि मुझे जो चाहिए उसमें वो बाधा डालता है, उसमें ये बीच में विघ्न करता है, तो विघ्न करने वाले के प्रति उसको द्वेष आए बिना रहेगा नहीं। और इसका मूल कारण यह है कि उसकी परावलंबी रुचि है, पर का अवलंबन लेने से सुख है, ऐसी जो इनकी रुचि है, ये रुचि के कारण उनको राग और द्वेष आए बिना रहेगा नहीं, अवश्य वो रागी द्वेषी होगा। हम सब नित्य स्व का संग रूप वर्तन करें, यह ही भावना है। वो पत्र पूरा करने में अंतिम में वो बात लिया है कि स्वरूप का संग करें, ऐसा ही वर्तन करें, ऐसी मेरी भावना है कि हमारे स्वभाव की स्थिति ऐसी हो जाए। अपना नाम लिखा है निहाल चंद्र, तो ये पत्र है, यहाँ पर पूरा होता है और आगे है 50वां। अच्छा 50वां पत्र वो लिखा है 64 जनवरी में लिखा है, 4-5 दिन के बाद लिखा हुआ है। आपका तारीख 18/12/63 का पत्र यथा समय मिला था, मैं यहाँ 17/12 को वापस पहुँचा था, मार्ग में अधिक रुकने से दिल्ली नहीं ठहर सका था। वो प्रेमचंद जी के ऊपर लिखा हुआ पत्र है, हाँ दिल्ली में, तो उनका 18/12 का पत्र मिल गया था, 17/12 को वो उधर कलकत्ता पहुँच गए थे, लेकिन वो दिल्ली रुकने की कोई बात हुई होगी लेकिन वो रुक सके नहीं, सीधे कलकत्ता चले आए थे। नित्य शुद्धात्म स्वभाव में दृष्टि अभेद कर, तादात्म कर, निर्विकल्प कर, सहज अहमपने से स्वमूर्ति की स्थापना करो। उपदेश और उपदेश के वचन तो वैसे ही होते हैं। जब कर्तव्य अकर्तव्य की बात चलती है तब ऐसे ही वचन व्यवहार होते हैं, लेकिन ये सिर्फ वचन व्यवहार है क्या? ऐसा कहने से कोई करने का हो नहीं जाता, कर लेता है क्या? ये तो मात्र कहने की बात है, क्योंकि उसमें भलाई है, अच्छाई है, उसमें सुख है, कल्याण है आत्मा का, इसलिए ऐसा करो ऐसा कहने में आता है, लेकिन ऐसा सहज होना चाहिए क्या? ऐसा सहज होना चाहिए, उसको करो ऐसा कहने में आता है। और खास करके जो जीव जहाँ खड़ा है उनको उसकी भाषा में समझाने का अच्छा रहता है, वो अच्छी तरह समझ सकता है। तो क्या है कि जीव कर्तृत्व में तो खड़ा है, वो कर्तृत्व में खड़ा है तो फिर उसको ऐसा करो ऐसा करो ऐसा कहने में आता है। फिर भी सही बात तो ऐसा है कि ऐसा सहज होना चाहिए, वो बात भी उनको समझाने में आती है, लेकिन अच्छी तरह समझ सके इसलिए उनकी भाषा में कहते हैं। इतनी बात है। क्योंकि दूसरा उल्टा करता है ना, तो उल्टा छोड़ो उल्टा करो ऐसा कहेंगे, लेकिन ये दोनों बात सहज होनी चाहिए। उल्टा छोड़ना भी सहज होना चाहिए, उल्टा करना भी सहज होना चाहिए। नित्य शुद्धात्म स्वभाव में दृष्टि अभेद कर, तादात्म कर, निर्विकल्प कर, सहज अहमपने से स्वमूर्ति की स्थापना करो। जैसे भक्ति भक्ति के रूप में की जाती है, भक्ति सिद्धांत के रूप में नहीं की जाती क्या? भक्ति में तो भगवान को ही कर्ता बनाना पड़ता है, भले ही वो वितराग है, किसी का वो भला बुरा करता नहीं, लेकिन भक्ति करने वाले तो यही कहेंगे कि आप ही हमारा कल्याण करने वाले हैं, जगत में आपके सिवाय हमारा कोई कल्याण कर ही नहीं सकता, और मैं तो पंगु हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं गूंगा हूँ नहीं बोल सकता, मैं अंधा हूँ नहीं देख सकता, ऐसा कहना पड़ता है भगवान के पास। तो भक्ति तो ऐसी चलती है। हाँ, फिर भी समझ में तो जो बात है सो है। तो वचन व्यवहार तो किसी भी प्रकार का हो, वस्तु स्थिति तो जो है सो है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सहज अहमपने से स्वमूर्ति की स्थापना करो, मैंने दृष्टि को श्रद्धा को अभेद करके, मैंने अभेद भाव में आकर के तन्मय हो करके, तादात्म मैंने उस रूप हो करके, निर्विकल्प स्वरूप में निर्विकल्प हो करके, विकल्प वाली बात नहीं है वहां, सहज अहमपने से, सहज बोलो क्या लिखा, सहज शब्द लिखा कि नहीं लिखा? हाँ, तो सहज पर तो ध्यान नहीं जाता है, और चार दफे करो ऐसा बात पर ध्यान क्यों गया? हाँ? बात तो सहज लिखा है कि सहज अहमपने से स्वमूर्ति की स्थापना करो, कृत्रिम रूप से स्थापना करो, ऐसा हमारा कहने का अभिप्राय नहीं है, सहज करो ऐसा। हाँ, भजन आपा माटे अभेदता तादात्म्यता ई બે એક અર્થ છે આમ તો, પણ વધારે વજન આપવા માટે છે એમ જ, અને પોતામાં પોતાપણું કરવું, હવે એ તો નથી કરતો એટલે કહેવું પડે છે, નહીતર એ કઈ કહેવાની વાત છે? અપને સ્વરૂપ મેં અપનત્વ કરના, એ કોઈ કહેને કી ચીજ હૈ ક્યા? હા, ये तो होना ही चाहिए। अपने स्वरूप में अपनत्व होना ही चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है तो कहना पड़ता है, ये बात है। देह मन वाणी राग वो क्षायिक क्षणिक भाव से भी पार, सूक्ष्म अति सूक्ष्म सामान्य द्रव्य में ही गठरी रूप होकर जमे रहो, कैसा भाव है?
हाँ, स्वयं मूर्ति
मैंने अपना चैतन्य मूर्ति आत्मा, स्वयं मूर्ति मैंने अपनी चैतन्य मूर्ति ऐसी आत्मा, हाँ 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 बिल्कुल, पूरा का पूरा अपना स्वरूप ख्याल में आता है। निराकार होते भी स्वरूपाकार तो है ही, क्या पुद्गलाकार नहीं होते हुए भी, पुद्गलाकार नहीं है इसलिए उसको निराकार कहते हैं, लेकिन स्वरूपाकार तो है ही। तो ऐसी अपनी चैतन्य मूर्ति साक्षात सिद्ध पति को छोड़ दो, अभी वैसा ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत स्वसंवेदन, अनंत अंतर्मुखता, अनंत वितरागता, ये सब वैसे के वैसे रखो, इनको देखो छोड़ दो तो ये सिद्ध हो गया। क्या हो गया? वो सिद्ध हो गया, क्योंकि देह छूटते ही तारा घाती निकल गया। तो लक्ष्य में से, ज्ञान में से, पहले नमो अरियंत्रणम बोलते हैं ना पंच परमेष्टि में, तो उसमें ये भगवान की जो मूर्ति है हम विराजमान करते हैं अरियंत पद की, वो अपार अपने ध्यान में आती है, ज्ञान में आती है। फिर नमो सिद्धानम, जब हम भाव आते हैं नमो सिद्धानम का भाव आवे, तब उसी मूर्ति में से ये जो देह का खोखा है उसको लक्ष्य में से हटा देना, अकेला चैतन्य मूर्ति सिद्धपद स्वरूपी जो आत्मा है निरावरण पूर्ण स्वसंवेदन रूप, वो ज्ञान में आना चाहिए। वैसा अपना स्वरूप है वैसा ज्ञान में आना चाहिए, उसपे मूर्ति। हाँ वो तो क्या है कि थोड़ा आकार में सहज थोड़ा कम पड़ता है, उतनी बात है। वो जो प्रदेश है, वो प्रदेश जैसे अपने नाक है उसमें खाली जगह है, कान में भी खाली जगह है, तो ऐसे मुंह में भी बंद रखते भी थोड़ी खाली जगह है, तो जब ये प्रदेश जो शरीर छोड़ जाता है सिद्ध पद में, तो ये प्रदेश में कहीं ऐसे होल नहीं रहते, खालीपना नहीं रहते, प्रदेश जो है वहाँ कनिष्ठ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उतना संकोच हो जाता है जो क्षेत्र है उसमें, उतना संकोच हो जाता है, तो कुछ न्यूनपना होता है, उसी कारण से न्यूनपना आता है थोड़ा, कोई प्रदेश फैल करके वहाँ नहीं जाता, उतना ही उतना वहाँ जो खाली पूर्ति होता है, खाली जगह की पूर्ति होती है, तो उतना संकोच आता है बाह्य आकृति में, हाँ आकृति में उतनी कमी होती है वहाँ, तो इसलिए किंचित न्यून कहते हैं, लेकिन ध्यान का वो विषय नहीं है, वो ध्यान का विषय नहीं है। ध्यान में कोई अंग उपांग का भेद नहीं ध्यान में लेना है, वहां तो एक जो मूर्ति है वही ध्यान में लेना है, एक अखंड मूर्ति है चैतन्याकार, वही ध्यान में लेना है, तो इसकी स्थापना करना है। ऐसे
मूर्ति के रूप में शब्द आता है और एक दृष्टि जाती है, कोई जैसे भी पुद्गल की मूर्ति बनी हुई मूर्ति है, मूर्ति जो चैतन्य मूर्ति है तो ध्यान में नहीं,
लेकिन वो जैसे अपने स्फटिक की प्रतिमा क्यों बनाते हैं? अपने जैन परंपरा में स्फटिक की प्रतिमा बना करते थे नहीं, तो ये ऐसी मूर्ति है जैसा स्फटिक निर्मल है वैसा निर्मल चैतन्य की मूर्ति है, ऐसा लेना जो चैतन्य प्रकाश का पुंज है, ऐसा अनंत चैतन्य प्रकाश का पुंज है, ऐसे चैतन्य की, अनंत चैतन्य की मूर्ति ऐसे एक स्थापना करना, अपने स्वरूप की अपने सद्धान में स्थापना करना। हाँ, परम कारुण्य वृत्ति के पहले मैंने दूसरों को, दूसरे का दुख दूर करने का भाव आएगा ज्ञानी को मोक्ष मार्ग में चलते हुए, तो उसके पहले ये भावना आती है कि मैं तो अपने स्वरूप में ही स्थिर रह जाओ। तो उसके पहले प्रथम दिन प्रतिमा था, दिन प्रतिमा था, दिन प्रतिमा, वो अपनी डायरी में अपना चिंतन को नोट किया है श्रीमद जी ने अपनी डायरी में, तो डायरी लिखते होंगे तो उसमें वो नोट किया है, अपना चिंतन को नोट किया है कि हे आत्मा तुम अपने में स्थिर हो जा, स्थिर हो जा, स्थिर हो जा, दूसरे को कुछ कहे इसके पहले तो स्थिर हो जा। पहले तो स्थिर होना है, ऐसी बात है। तो क्या है कि आत्म स्थिरता की, आत्म आराधना की प्रधानता है मोक्ष मार्ग में, उपदेश की प्रधानता नहीं है। जितनी आराधना की प्रधानता है उतनी उपदेश की प्रधानता नहीं है। देह मन वाणी ये तो सब पुद्गल के हैं, स्थूल है, राग है विकारी पर्याय, वो भी स्थूल है विजातीय है, और क्षायिक क्षणिक भाव, क्षायिक भी हो, क्षणिक भाव अपना शुद्ध क्षायिक मैंने पूर्ण शुद्ध भी हो, इससे भी पार, इससे भी आगे, यहाँ तक नहीं इससे भी आगे पार, सूक्ष्म अति सूक्ष्म सामान्य द्रव जो स्वभाव है वो अति सूक्ष्म सामान्य द्रव है, उस मई गठर रूप, उसमें गठर रूप हो जाओ, जैसे वो गांठ को बांधते हैं ना मजबूत, ऐसा अपने स्वरूप में इतनी मजबूती से बंधे रहो, अपने स्वरूप रूप गठरी रूप होकर के जमे रहो, ये स्थिर होने की भावना है, स्वरूप में जम जाने के लिए वो बात है कि ऐसे सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वभाव में द्रव्यमय होकर के, जैसे कोई निविड गठरी होवे, मजबूत गठरी होवे, होते ना गुरुदेव दृष्टांत देते थे कि जो रुई होती है कॉटन, तो उसकी गठरी बांधते ना, उसकी जो गांठ बांधते हैं वो, इसके पहले कितना था कि पूरा कमरा जितना उतना क्षेत्र था रुई का, फिर उसको दबा दबा करके प्रेस करते हैं, और प्रेस में फिर उसकी गठरी बांधने में आती है, तो निविड़ हो जाता है, पुलाण नहीं रहता बीच में। ऐसे अपने स्वरूप के जमने में बहुत घनिष्ठता होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं, स्वरूप में जमने में घनिष्ठ भाव होता है, गठरी रूप होकर के जम जाते हैं जी, क्षायिक क्षणिक भाव। क्षायिक क्या है कि कर्म क्षय से उत्पन्न होने वाला शुद्ध परिणाम, वो परिणाम क्षणिक है, नहीं उससे पार, परिणाम से पार ऐसा लेना है, परिणाम से पार लेना है। लिखा है ना, क्षायिक क्षणिक भाव से भी पार, इससे आगे जाने की बात है। त्रिकाली सामान्य, जो त्रिकाली सामान्य द्रव है उस मय हो करके जम जाओ, उसमें स्थिर हो जाओ, ये ध्यान का विषय है, ये ध्यान का विषय है, जम जाना वो ध्यान का विषय है। इस नित्य बल की अधिकाई से क्षणिक परिणाम में खिसको नहीं, नीचे नहीं उतरना, यहाँ से खिसकना नहीं, नित्य बल की अधिकाई उतनी रखना, ये द्रव्यमयी भाव में उतनी अधिकता रखना, इतना जोर होना चाहिए कि क्षणिक परिणाम में आना नहीं है। क्षणिक परिणाम में आनंद है तो के भले ही हो, हमारा लक्ष्य वहां नहीं है। वेदना अवश्य है लेकिन लक्ष्य हमारा वहां नहीं है, उसमें खिसको नहीं। ज्ञान राग से सहज पृथक होकर, जो ज्ञान है, ज्ञान का पर्याय है, वो राग से सहज पृथक होकर, सहज भिन्न रह करके, क्षणे क्षणे वृद्धिगत होते होते, क्या स्वसंवेदन ज्ञान में वृद्धि होती है, स्वरूप ज्ञान में घनिष्ठता आती है, विज्ञान घनता आती है, और राग से पृथक होकर क्षणे क्षणे वृद्धिगर होते होते पूर्ण उगड़ जाएगा। वो ज्ञान है, वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान है वो राग से पृथक होता रहता और वृद्धिगत होता रहता, पूर्ण हो जाएगा ज्ञान। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के, ये सारी बात है वो पूज्य गुरुदेव श्री के आशय है। क्या? मैं नहीं कहता, ये क्या कहता है, सारी बात कह करके किसके पर चढ़ाया, श्री गुरु के नाम पे खता दिया, चढ़ा दिया। चलो ये तो गुरुदेव कहते हैं ऐसे। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के आशय को यथार्थ परिणमत कर देना, हम सर्व मुमुक्षुओं का सदा सुखानुभवी कर्तव्य है। ये बात है, भक्ति बहुत थी उनको, मुमुक्षुओं को पारमार्थिक विषय लिखते लिखते गुरुदेव की याद आती है कि मुझे तो गुरुदेव मिला तो मेरा तो परिभ्रमण छूट गया, अगर नहीं मिलता तो न जाने मेरा क्या होता, अनंत काल तक कैसा कैसा दुख में जाना पड़ता। तो कहते कि ये साधु बात है, वो तो गुरुदेव श्री का आशय है, गुरुदेव श्री का जो उपदेश है उसी का ही आशय है, उसको यथार्थ परिणमत कर देना, उसको परिणमन में ले आना, ऐसा परिणमन हो जाना और उसमें सुख का अनुभव होना, ये हम सब मोक्षों का यही कर्तव्य है। महा आनंद का नित्य भोग उठा रहे, यही भावना है। स्वरूप में जो महान आनंद पड़ा है, अनंत आनंद पड़ा है, इसका भोग उठा चालू रहे, नित्य रहे, यही भावना है। मैंने सुखी, सबों को सुखी, सुख की प्राप्ति हो, यही भावना है। हाँ, नित्य शुद्ध सुख सागर के रस प्रति वृत्ति द्वारा आस्वादन करते रहना ही हर आत्मा के लिए परम कार्य है, अन्य सर्व अकार्य है। क्या? ये कहाँ से लिया है? ऊपर का दूसरा प्रचार है। नित्य शुद्ध सुख सागर के रस प्रति वृत्ति द्वारा आस्वादन करते रहना ही हर आत्मा के लिए परम कार्य है, अन्य सर्व अकार्य है। कार्य होता है तो किया जाता है, ऐसी एक पद्धति है। नित्य शुद्ध सुख सागर अपना मूल स्वरूप है, अपना त्रिकाली आत्मा, उसके रस, उसका रस आना, रुचि आना, उसकी रुचि होना, उसके प्रति रस आना, और परिणमन द्वारा, वृत्ति मैंने परिणाम द्वारा आस्वादन करते रहना ही हर आत्मा के लिए कर्तव्य है, परम कार्य है, मैंने इष्ट कर्तव्य है। अन्य सर्व है वो कार्य नहीं है, ये कार्य है और दूसरे सब अकार्य है, नहीं करने लायक कार्य को अकार्य कहते हैं। यही करने लायक कार्य है और सब करने लायक नहीं है। जैसे भी होवे, पर सन्मुख रस स्थिति शिथिल करो, क्षय करो। क्या? जैसे भी होवे, पर का रस है उसको शिथिल करो, छोड़ दो, ये करने लायक नहीं है। क्योंकि पर रस है, पर सन्मुखता का जो रस है उसमें नियम से आकुलता और दुख की उत्पत्ति होती है, तो ये शिथिल करने लायक है। स्व सन्मुख आनंद में निरंतर लीनता यह स्थिति पूर्णपणे प्रकट कर देगी। स्व सन्मुख आनंद में निरंतर लीनता यह स्थिति को पूर्ण रूप से प्रकट कर देगी। आनंद में निरंतर लीन रहने से फिर पूर्णता की प्रकटता हो जाएगा। निकट आत्मार्थी को इस हेतु बिना अन्य लक्ष्य किंचित भी नहीं होता। जो आत्मार्थी मोक्ष मार्ग के निकट आ गया, आत्मकल्याण के निकट आ गया, उनको तो जीवन में दूसरा लक्ष्य नहीं होता। संसारी प्राणियों को अन्य लक्ष्य होता है, आत्मार्थी को अपना पूर्ण दिशा प्रकट करने के सिवाय कुछ लक्ष्य नहीं होता, यही उनका ध्येय होता है। वरना संसार प्रति के दुखों से किंचित भी हटना नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं होगा तो संसार के दुख को अवश्य भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, यहाँ से बचने का कोई उपाय नहीं है। एकांत आत्महित की भावना में रहना, यही आत्मार्थी का कार्य होता है। जब भी उनको संसार के दुख से छूटने का होगा, जिसको संसार से छूटना है उसको तो आत्मकल्याण की भावना में ही रहना है। संसार के पदार्थों का जो लक्ष्य है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये जो महत्वाकांक्षा संसारिक पदार्थों की है, यही तो परिभ्रमण के दुखों को आमंत्रण देने की बात है उसमें। तो विघ्न करती है
कोई बात,
पर की अधिकता है वो स्वरूप के कार्य में विघ्न करने वाली है। तो अधिकता क्या है? महिमा आती है। महिमा क्यों आती है? सुख के कारण आती है। तो ये सुख की कल्पना, सुख की जो कल्पना है पर पदार्थ में, वो कल्पना जहाँ वहां तक छूटती नहीं, वहां तक सुख बुद्धि अभिप्राय सुख का रहेगा, वो परिणाम को उस और खींचेगा, आकर्षित करेगा, वो खिंचाव मिटने वाला नहीं है, तो दुख भी मिटने वाला नहीं है। तो सहज वस्तु स्वरूप को जान करके उसको सुख बुद्धि तो पहले सबसे पहले हटनी चाहिए। सुख बुद्धि हटेगी तो आसक्ति छूटेगी, आसक्ति छूटेगी तो आकुलता मिटेगी, दुख मिटेगा, वरना तो दुख मिटने का कोई उपाय है ही नहीं। બધા પત્રમાં લગભગ ગુરુદેવનો ઉપકાર આવે છે। એમની જે તીખી દ્રષ્ટિની સાથે ભક્તિ પણની વિશિષ્ટતા છે, એ સહેજ મોક્ષ માર્ગમાં જે પરિસ્થિતિ હોય છે એને પ્રકાશે છે।
दृष्टि का विषय लेने का था ना, दूसरे एक सौ एक गुजराती आत्मधर्म अंक 10-11 में से उद्धृत हिंदी अनुवाद जो है गुजराती में लिखा हुआ है और 2 अंक साथ में निकला है, 10वां और 11वां श्रावण और भादवा का साथ में निकला है, पहले साल का 10-11 अंक मैंने पहले साल का है क्योंकि 12 अंक में एक साल पूरी होती है। तो गुजराती आत्मधर्म चालू हुआ शुरू 2000 के साल में गुजराती आत्मधर्म चालू हुआ और गुरुदेव के प्रवचन प्रकाशित होने लगे। तो पहले साल में जो गुरुदेव के प्रवचन प्रकाशित हुए उसमें से दृष्टि का विषय शुरू में कैसा आता था, 2000 के साल में कैसा आता था, उसका नमूना यहाँ पर मिलता है। तो ये बात सुगानी जी को भी पढ़ाई थी, कोई अपना मुमुक्षु थे और चर्चा के दौरान ले आए थे इस आत्मधर्म को और बोले कि आप पढ़ो इसको, दृष्टि का विषय का शीर्षक है उसमें दृष्टि का विषय। तो इस शीर्षक के नीचे जो बात लिखी हुई थी उन्होंने पढ़ी तो ऐसे बोले कि यही चर्चा तो अपन रोज करते हैं, यही चर्चा चल रही है अपन यहाँ पर, अपने यहाँ भी यही चर्चा चल रही है, ऐसा ही बोले थे। बिल्कुल ठीक जैसी सुगानी जी की शैली है उसी शैली से गुरुदेव की ये बात यहाँ आई थी। देखो हाँ एवं पहले थी कहता वैसे पर पहला इतलो मात्रा थोड़ी ऊंची थी, ये तो पते कहूं कि पहला ऊंची मात्रा में मिताड़ी में कहता था, अभी खुला करके बहुत कहते हैं वो बात जरूर। लेकिन वो तो वो ऐसा करने लायक है तो किया, किसी के कारण से नहीं किया। क्या गुरुदेव को किसी एक व्यक्ति के पक्षपात हो सकता है क्या? हाँ, और वो तो बिल्कुल दूर रहने वाले अनजाने थे। हाँ, दृष्टि प्रकाश तो बाद में प्रकाशित हुआ, वो तो बिल्कुल अनजाने रहे, जहां तक जिंदा रहे वहां तक तो अनजाने रहे थे, तो उसका पक्षपात करने का क्या कारण है? हाँ, कोई इतना समर्पण तो नहीं कर दिया कि पक्षपात कर ले। यदि आदमी कोई पक्षपात करता है तो समर्पण करने वाले के प्रति करता है, लेकिन वो भी नहीं है वहां तो सिर्फ गुण के प्रति प्रमोद भाव आता है, गुणवान के प्रति प्रमोद भाव आता है, उतनी बात है। वस्तु त्रिकाली है, क्या दृष्टि का विषय जो है वस्तु, वो वस्तु त्रिकाली है, जिसके आश्रय से निर्मल पर्याय होती है। जो त्रिकाली वस्तु दृष्टि का विषय भूत है उसके आश्रय से पर्याय निर्मल होती है, शुद्ध होती है। पर्याय का शुद्ध होने का दूसरा कोई इलाज नहीं है। जीव के परिणाम में राग द्वेष मोह आदि मलिन भाव हैं, उसको क्षय करना, उसका नाश करना, अभाव करना, इसका एक ही इलाज है कि दृष्टि के विषयभूत जो त्रिकाली पदार्थ है उसी का आश्रय करना। शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा के आश्रय से पर्याय शुद्ध होती है, पर्याय शुद्ध होने में या मलिनता को नाश करने में दूसरा कोई इलाज नहीं है। पर्याय के आश्रय से पर्याय निर्मल नहीं हो सकती। क्या हम परिणाम पर वजन रखें, परिणाम पर जोर देवें,
तो पर्याय शुद्ध नहीं होगी, परिणाम शुद्ध नहीं होगा। गुरुदेव दृष्टांत भी देते थे कि जो वो आम का पेड़ है उसको छोटे छोटे आम बैठती है, छोटी कैरी आम, तो पानी किसको पिलाया जाए, वहां पानी पिलाएंगे क्या? हाँ, उसके ऊपर पानी पिलाना नहीं चाहिए। पानी तो मूल में पिलाना चाहिए, खात है, पानी है, वो तो मूल में देना चाहिए। जब वो पकेगी, बड़ी होगी, उसमें रस आएगा, सब कुछ वहां होगा। ऐसे परिणाम है वो तो फल स्वरूप है, तो फल को सिंचन नहीं करना है। पानी है, वो फल का उद्भव स्थान जो द्रव्य है वहां सिंचन करना है। ऐसा है, पर्याय के आश्रय से पर्याय निर्मल नहीं हो सकती। गुरु के वचन प्रति लक्ष्य जाता है तब तक निमित्त, शास्त्र, गुरु और ज्ञान सब विनाशी। देखिए मैंने अन्य पदार्थ के प्रति लक्ष्य नहीं जाना चाहिए क्या? ये सब विनाशिक है, निमित्त भी विनाशिक, शास्त्र भी विनाशिक, गुरु भी विनाशिक, ज्ञान भी विनाशिक। लेकिन ध्रुव की ओर नजर लगे तब ज्ञान अविनाशी होता है। विनाशी इसलिए है कि ध्रुव अविनाशी है, और ध्रुव में अहम बुद्धि करने वाला ज्ञान भी अविनाशी है, क्योंकि वो अनुभव रहता है, मैं अविनाशी हूं ऐसा अनुभव रहता है। इस तरह ये गुरुदेव ने जो भी बात खोली है, बहुत सुंदर बात खोली है, बहुत प्रमोद हुआ था। सुगानी जी को भी पढ़ करके बहुत प्रमोद हुआ था इस बात को, इसलिए वो बात हमको संकलन में याद आ गई तो ले लिया। उधर यहाँ तक रखे
भगवान। जय हो परम कृपालु की।